فاتحة. بسم الله. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تربیت نسل ظہور کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری پانچویں کڑی ہے. نیکسٹ جنریشن سے متعلق جو کنسرن ہے وہ آج کا نہیں ہے، ہر دور میں رہا ہے. ہر دور کا انسان دو طرح کے دغدغے سے، کنسرن سے گزرتا ہے، ایک بقائے نسل، دوسرے بقائے آئیڈیالوجی. وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ وہ نسل ہی باقی رہے بلکہ اس کی فکر بھی باقی رہے. حقیر نے دس مجلسیں شاید تین چار سال پہلے کراچی میں محفل مرتضیٰ میں پڑھی ہیں، جنریشن گیپ کے عنوان سے. خصوصاً جوان بچے اگر چاہیں، انٹرسٹڈ ہیں، دے کین وزٹ دیم. بہت ہی اہم باتیں ہیں. اور اسلام نے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اگر نہیں معلوم ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ وی آر ناٹ کین ان انڈرسٹینڈنگ دی ریلیجن. ہم لوگ جو ہیں اتنی دلچسپی رکھتے نہیں ہیں. سیدھی سیدھا بات بتا رہا ہوں میں، بعض وقت بلنٹ، قولو قولا سدیدا، بات کو کھری کھری بتا دو، سیدھی سیدھی بتا دو. ایسی بات نہ کرو جو فینس میں ہو، ادھر بھی پڑھے ادھر بھی پڑھے، ایسی بات نہیں. سیدھی بات کرو، 2+3=5. ریلیجن ہمارے لیے محرم آ گیا تو، جمعہ آ گیا تو، या दिनों में महदूद है या फसलों में महदूद है, जिसकी बिना पर नतीजा यहाँ तक पहुँचा है कि हम मुसलमान इतनी मैन पावर रखने के बाद, इतना पावर, 59 मुस्लिम कंट्रीज़, लैंड जितनी हमारे पास है, जितना रिसोर्सेस हमारे पास हैं, किसी के पास नहीं है। तो फिर ये बेचारगी क्यों है? वेयर इज़ अ मिसिंग लिंक? उसकी वजह यह है कि हमें एक फोर्स है जो दीन से हटाता जाता है, उसको शैतानी फोर्स कह लीजिए, उसको कोई भी फोर्स नाम दे दीजिए, लेकिन देर इज़ सम काइंड ऑफ फोर्स। तो ये चैलेंज को कबूल करें कि हम दीन को समझने की कोशिश करें, और जितना समझ रहे हैं, मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफजल सलात व सलाम, फरमाते हैं अल इस्लाम कुल्लहू अमल। बहुत ही खूबसूरत है, छोटे इमाम कलामुल इमाम अमामुल कलाम, जब मौला का कलाम, इसके माने उससे बाद, उससे बढ़कर कोई, अगर बढ़कर है तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम के बाद मासूमीन का कलाम। अल इस्लाम कुल्लहू अमल, इस्लाम इज़ इक्वल टू एक्शन, अगर एक्शन नहीं है तो इस्लाम नहीं है, अमल नहीं है तो इस्लाम नहीं है। और आप तो खैर अमल की दावत देते हैं, तवज्जो, यानी परफेक्शन की तरफ दावत देते हैं, न सिर्फ अमल हो, हमारा अमल परफेक्शन हो, जब परफेक्शन होगा तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। और चुनांचे देखा, विद इन 43 ईयर्स एक छोटे से कंट्री ने दुनिया के सामने गदीरी विलायत को पेश किया तो दुनिया परेशान है। एक झलक बताया कि अभी तो नहीं, पूरी तरह से वाज़ह नहीं हुआ है, सिर्फ एक झलक है, ये इनकलाब की आहट है। इनकलाब कहाँ, ये तो इनकलाब की आहट है, अभी इनकलाब नहीं है। इसका आलम यह है कि दुनिया परेशान है कि क्या हैं, कि 43 इयर्स में जो कम्युनिटी 37% लिटरेसी रखती थी, आज 100% लिटरेसी है, और जो कम्युनिटी के पास साइंटिस्ट का सवाल ही नहीं होता था, आज इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं कि दूसरे के ड्रोन को अपने कंप्यूटर के ज़रिए से उसमें एंटर होके उसको ज़िंदा उतार लेते हैं। दुनिया दंग रह जाती है कि ये है क्या, ये कौन है, इनका ज़हनी क्या है, जो दरे अली तक पहुंचता है, दरे खुदा तक पहुंच जाता है। तो अगर इंसान समझे इन चीज़ों को और दीन को एज ए प्रैक्टिकल हज करे, हज कहते हैं वी हैव टू टेस्ट, कि रिलीजन उस वक्त कामयाब है जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इस्लामी जमहूरी ईरान 8वें नंबर पर है, इतनी पाबंदियों के बाद, इतने सैंक्शन के बाद। तो फिर मैं एक जुमला कहता हूँ, और माशाल्लाह अहले नज़र हैं, तो हुजूर हमें सैंक्शन से क्यों डराते हो, हम तो शेबे अबी तालिब में पलने वाले। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सर, अल्लाहुम्मा सल्ले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% वो ठीक हो गया, ना, जो भी झलक है थोड़ी सी, वो ऐसी झलक है कि दुनिया परेशान है। इंशाल्लाह वो ज़माना आएगा। मैं तो कहता हूँ कि इमामत की विलायत की, विलायत की नियाबत का ये नूर है, तो खुद विलायत का क्या नूर होगा, ये नियाबत का ये असर है, तो उसकी खुद आप अंदाज़ा कर सकते हैं, 1000 टाइम मल्टीपल करें तो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ ला। कल मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था कि दो तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो नॉन टेंजिबल हैं, तीन तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो तरबियत औलाद में हैं, तरबियत नस्ल में है, वो टेंजिबल हैं। नॉन टेंजिबल से मुराद गैर महसूस, हम लोग उसको महसूस नहीं कर सकते। उसमें से पहला नॉन टेंजिबल, नस्ल में असरात, खून में असरात, हमने इशारा किया था, मौला अमीर मोमिनीन अलैहि अफजल सलातो वसलाम ने कहा, अकील मेरे भैया अकील, ऐसे घराने से शादी करा दो, घराने में शादी करा दो जिससे मुझे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हुसैन की मदद कर सके। तो मालूम हुआ जीनियालॉजी को 1400 साल पहले मौला अमीर मोमिनीन ने इन इस ढंग से समझाया है कि आप जब करें तो नौजवान बच्चों से गुजारिश मैंने की थी कि इन्वॉल्व लव में मत हो जाइए, लव इज़ ब्लाइंड कहा जाता है कि अंधी है, बल्कि लव होशियार रहना चाहिए। हमें कहाँ पैदा होना है इख्तियार नहीं है, किस घर में पैदा होना है इख्तियार नहीं है, किस शहर में पैदा होना है इख्तियार नहीं है, किस ज़माने में पैदा होना है इख्तियार नहीं है, एक इख्तियार है किससे शादी करना है, वो भी हाथ से गंवा लें तो फिर बाकी क्या रहेगा। आप इस पे ज़रा सा होशियार हैं जवान बच्चे, एक इख्तियार आपके पास है टू चूज ए स्पाउस, और इसीलिए इस्लाम ने कुफ कहा है, कुफ यानी राइट सूट। कुरान में चार तरह की फैमिलीज हैं, बहुत अच्छी तरह से हैं मेरे साथ आप लोग। कुरान मजीद में कितने हैं, चार तरह की, शौहर भी अच्छा बीवी भी अच्छी जी। हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा, शौहर भी अच्छा बीवी भी अच्छे। और ज़रा नीचे आइए, सरकार रिसालत बाप खदीजतुल कुबरा, और ज़रा सा अली मुर्तदा व फातिमा ज़हरा। लौला अली लम यकुन लफातिमा कुफ, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता, इक्वल सूट जिसको कहते हैं, ना होता था कुफ। तो ये फैमिली है, हस्बैंड भी गुड वाइफ भी गुड, उसके मुकाबले में हस्बैंड भी बैड वाइफ भी बैड। मिसाल कुरान देता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग्ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब व امرأته حمالت الحطب في جيدها حبل من مسد। हस्बैंड भी बुरा वाइफ भी बुरे, दो तरह के हो गए ना, दोनों अच्छे दोनों बुरे। अब रहे दो चॉइस, हस्बैंड अच्छा बीवी बुरी। ضرب الله مثلا اي قران ہے میں بھی للذین آمنوا مومنین کے لیے مثال دی جا رہی ہے، کون کن مومنین کو، دو بیویوں کی، کانتا تحت عبدین، دو کافروں کو، کافروں کو مثال دے رہا ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے 67 چیپٹر۔ ضرب الله مثلا للذین کفروا، کافروں کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ دو عورتیں ایسی تھیں، they live with good people, कौन है वो, कानत तहत अब्दैन मिन सालिहैन मिन इबादना, they are very pure, सालिहीन में से थे, कौन, हजरत नूह हजरत लूत। फखानतहुमा, दोनों ने खियानत की अपने शोहरों से। फखानतहुमा, आखिर में कुरान ने कहा फकील दुखुलिन्नार, नबुवत के साथ रहने से कुछ नहीं होता, जहन्नम में चली जाओ। है कुरान भी मिसाल दे रहा, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी के साथ रहने से कुछ नहीं होता, रंग ढंग जब तक आप अपनाएंगे नहीं उससे साथ रहने में कोई फायदा नहीं होगा। हस्बैंड अच्छा बीवी खराब, ये तीसरी फैमिली। चौथी फैमिली दी अदर वे, हस्बैंड बुरा बीवी अच्छी। है 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 है, तो बहुत ही अच्छा। इसी सूरह तहरीम में ضرب الله مثلا للذين آمنوا مؤمنین के लिए अल्लाह मिसाल दे रहा है, कौन है, एक हजरत मरियम, दूसरे कौन है, ये अजीब गरीब है, इमरात फिरौन, नाम भी नहीं लेता, फिरौन की जौजा, फिरौन के घर में रहती है। मैं जवान बच्चों को हमेशा, हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं मौलाना माहौल ख़राब हो गया, माहौल ख़राब हो गया, माहौल ख़राब हो गया, माहौल ख़राब हो गया। मरहूम ज़ीशान हैदर साहब जब गए थे कराची, हर एक कह रहा क्या करें मौलाना, हालात ख़राब हैं, माहौल ख़राब है। तो मेंबर पे गए, उन्होंने कहा कि मैं समझा था आपके बच्चे ये माहौल के बच्चे कैसे हो गए जी, ये मैं समझ रहा था कि अब तक आप माहौल के, ये जो है अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के हवाले कर देना, ये हमारी बदबख्ती है। बच्चों को अपने बनाइए, माहौल के मत बनाइए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा इंजेक्शन है तो सलवात नहीं होगी ना भी सलवात पढ़ियो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जल। गौर कीजिए बहुत अच्छी तरह से, हस्बैंड बुरा तो हम माहौल मौला रखे, कैनेडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, हम लाख कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आइंदा जब आऊँगा टेंजिबल फैक्टर्स में बहुत तफसील से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज इशारा सुन लीजिए वो ये है कि इमरात फिरऔन, फिरऔन की ज़ौजा ने यह साबित किया माहौल के ख़राब होने के बावजूद भी मैं ऐसे ईमान को पालती हूँ कि मैं घर भी बनाती हूँ तो अल्लाह के पहलू में घर बना, मेरी बात नहीं है। परवरदिगार इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, परवरदिगारा मुझे घर नहीं चाहिए, तेरे पहलू में घर चाहिए, तेरे पर जो ये जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं अज़ान के बाद, अल्लाहुम्मा जल कल्बी बारो ऐशी खारो, आखिर में क्या है वज अली इंदा कब्र नबी का, नहीं कब्र नबी का कब्र निकाल दीजिए, कब्र इंदा कब्र नबी कब्र के पहलू में तो क्या क्या गड़बड़ है, इंद नबी का ये कहिए, आइंद वज अली इंद नबी का, परवदिगार नबी के पहलू में जगा दे, तो नबूवत के पहलू में जगह, यहाँ कहाँ पर उस मुकाम पे जहाँ पर इंशाल्लाह हम जब जाएंगे तो ऐमे मासूमीन के साथ में रहने में फ़ख्र करना, जन्नत में जाना कमाल नहीं है, किसकी जन्नत में जाना कमाल है, जन्नत में सभी चले जाते हैं लेकिन हुसैन के साथ रहना कमाल है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इंशाल्लाह एक मोमिन आले फिरौन, इसी फिरौन के ज़माने में फिरौन के दरबार में रहने वाला, कुरान में रजुलुम मिन आले फिरौन मुमिनुन मिन आले फिरौन यक्तुम ईमानहु, जो अपने ईमान को छुपाता था उसने कहा ऐसे मर्द को मारना चाहते हो जो जो कह रहा अल्लाह मेरा रब है, अगर वह सच कह रहा है तो उसके हवाले, अगर झूठ कह रहा है उसके हवाले, इसके पीछे भी क्यों पड़े हुए। फिरौन के दरबार में भी फिर हजरत मूसा को बचाने वाला, तो मालूम हुआ अगर हम चाहें इस कनाडा में भी अपने ईमान को बचा सकते हैं, इस अमेरिका में भी अपने ईमान को बचा सकते हैं, माहौल पे दोष मत दीजिए, अपने ईमान को टटोलिए, ईमान को कवी कीजिए। क्या कहा, कौन थी मालूम है आसिया, शी वॉज अंडर 30, बहुत ही फर्स्ट लेडी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मुमिना ज़ाहरन भी, जब उसने इजहार कर दिया मूसा के साथ रहने का और कह दिया कि तुम जालिम हो, तुम गलत हो, रांग हो, तो ज़िंदा लिटाया गया और हाथों पैरों में ज़िंदा जब थी तो कील ठोंके गए, तो मालूम है फिरौन को ज़ातल अवताद दविल अवताद कहा है कुरान ने, मेख वाला, वो कीले वाला, कीले वाला फिरौन, ये कीले वाला क्यों कहा गया, सजा देता था तो वो कीले ज़िंदा ठोंकता था, तो जनाबे आसिया को ज़िंदा लिटाया गया और हाथ में पैरों में ज़िंदा कीले ठोंके गए, उसके बाद गोल एक बहुत बड़ा पत्थर उस पर गुजारा गया, जब गुजारा गया तब जनाब आसिया ने दुआ, रब्बी इब्नली इंदका बैतन फिल जन्नत, परवरदिगारा मुझे घर नहीं चाहिए, तेरे पहलू में घर चाहिए। ए आसिया अल्लाह का तो कोई पहलू नहीं है, तुम ये क्या दुआ कर रही हो, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, का समझ अल्लाह के पहलू के माने विलायत इलाही के पहलू में ये दुआ कर रही हूँ, परवरदिगार फातिमा जहरा के पहलू में जगा दे दे। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये चार फैक्टर हैं। मुझे आज जा करके आज मुहर्रम में ज़बाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मूसा व फिरौन शब्बीर व यज़ीद, इकबाल खूबसूरत موسى و فرعون شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید. دو فورسز ہیں ہیومن بینگ میں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹیو. ایک موسیٰ کی فورس ہے, ایک فرعون کی فورس ہے. یہ جنگ ہے اندر اندر انسان کے اندر ایک فائٹنگ جاری ہے. ایک موسیٰ کی فوج ہے, ایک یزید کی فوج ہے. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید, یزید ایک طرف ہے, امام حسین ایک طرف ہیں, ایک طرف ہیں. زندہ حق از قوت شبیری است. اب یہ موسیٰ تو پرانی بات ہو گئی, اب حسین لاحق ہے, قیامت تک حسین ہے. زندہ حق از قوت شبیری است, مردہ باطل داغ حسرت میری است. اقبال 1400 سال پہلے, یعنی 100 سال پہلے یہ فکر دے رہا جو قرآن کی ہے. کیا فکر ہے؟ یہ دو قوتیں انسان کے پاس ہیں, ایک پازیٹیو قوت, ایک نگیٹیو قوت. پازیٹیو قوت اگر قوی ہو گئی تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا, اگر نگیٹیو قوت قوی ہو گئی وہ کس سے بھی بتر ہو گیا؟ حیوان سے بھی بتر ہو گیا. ضرورت ہے کہ انسان اس مقام کو سمجھ سکے. تو عزیزان گرامی, کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی دنیا, یعنی جس دنیا میں ہم وی آر ایگزسٹنگ, جس دنیا میں ہم موجود ہیں, یہ دنیا فکشنل دنیا, اور 90% سے زائد جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ فکشنل ہیں. کتابیں ہماری فکشنل ہیں, اور ہمارے موویز جو ہیں فکشنلس ہیں, حتیٰ ہماری زندگیاں بھی فکشنل ہیں. اس پہ بہت ڈیٹیل گفتگو ہے, اگر میں اس میں چلے جاؤں گا تو پھر اصل موضوع سے چلے جاؤں گا. یہ چونکہ یہ چاروں طرف سمجھنا ضروری ہے اصل تربیت کے عنوان سے. تو عزیزان گرامی, سوال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں, قرآن میں بھی تو فکشن ہے, قرآن بھی تو جنت کی بات کر رہا ہے, قرآن بھی تو حور کی بات کر رہا ہے, قرآن بھی قصور کی بات کر رہا ہے, قرآن بھی تو بات کر رہا ہے, یہ بھی تو فکشن ہے, اشتباہ ہے. قرآن کو اگر کوئی مسلمان فکشن کا فے بھی سمجھے تو وہ مسلمان نہیں ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے, اگر افسانوی کا الف بھی سمجھے تو وہ مسلمان نہیں. کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ موجود نہیں ہے. مسلمان کو حور کے قصے کو, جنت کے قصے کو افسانہ کے طور پر پڑھنا نہیں ہے, حقیقت کے طور پر پڑھنا ہے. وہ کیسے؟ یہ ذرا سا میرے ساتھ رہی ہے تو انشاءاللہ میں چند جملوں میں اس مرحلے سے گزرنا چاہتا ہوں. بہت غور سے, بہت اور بہت ہی اہم سوال ہے. پاسبلٹی سے انسان کا ذہن ہے, سوال کر سکتا ہے کہ کیا اسلام میں نے یہ جو گفتگو کی ہے آیا فکشنل نہیں ہے؟ اسلام کا دھنیہ نہیں ہے. حدیث میں ہے جو قرآن پڑھے گا ایک ایک حرف کے عوض میں اللہ ایک نوری مخلوق کو پیدا کرے گا. صرف پڑھنے پر, سمجھنے تو بہت بڑی بات, اگر پڑھے گا ایک حرف پر. حرف کے معنی کیا ہیں؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. 786 جو ہے یہ نیومیرالوجی ہے, الف کے ایک, بے کے دو, تین, اس میں لا کر کے 786 یہ نیومیرالوجی ہے جس کو علم الحساب کہتے ہیں. یہ نمبر آف ورڈز نہیں ہیں, لیٹرز نہیں ہیں, بلکہ نیومیرالوجی کے اعتبار سے یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے نمبر ہیں؟ 19. 19 کیوں ہیں؟ عدد کی ابتدا ایک ہے, انتہا 9 ہے. اس کے بعد جتنا بھی مرتبہ بڑھاتے جائیے تو ایک ہے اور 9 ہے, ایک ہے 9 ہے. اس کے بعد 10 کیا تو اس کے بعد 10 کے بعد کیا ہے؟ ایک ہو گیا. 11 کیا تو 2 ہو گئے, 12 کیا تو 3 ہو گئے, 13 کیا تو 4 ہو گئے. پھر آپ جتنے بڑھتے چلے جائیں گے پلٹ کر کے 9 تک ہی آئیں گے. ایک اللہ ہے, 9 فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی, اللہم صل. جی یہ فضائل کے چھیٹے ہیں تاکہ ذرا سا بیدار بھی ہوں, اور یہ مہک جو ہے اہل بیت کی محبت کی ہمارے ذہنوں میں ذرا سا جلا بخشے, اور یہ جو ہیوی ڈیوٹی چیزیں آ رہی ہیں اس میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. اگر میں نے بسم اللہ پڑھا تو اللہ نے 19 نوری مخلوق کو پیدا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, 19 نوری مخلوق نے 19 اینجلز کو پیدا کیا جو میرے لیے زندگی بھر تک استغفار پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اب آپ ایک سورہ پڑھیں گے تو کتنے ہو گئے؟ تو ہمارے پاس حساب ہی نہیں ہے. جس طرح سے قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اف یو اسٹارٹ کاؤنٹنگ دا فیورس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یو کی ناٹ کاؤنٹ, اللہ کے فیورس کو اللہ کی عطاؤں کو تم گن نہیں سکتے. اسی طرح سے اللہ کی یہ عنایتوں کو بھی ہم گن نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم لوگ لمیٹیڈ ہیں, وہ ان لمیٹیڈ دنیا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اب ذرا سا نوجوانوں کے ذہن میں مولانا ہاؤ ٹو انکریز لو آف قرآن وتھ لاجک. ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن سے ہمارا سپرفیشل لو نہ رہے, محبت نہ رہے. میں ابتدائی مجلس میں, پہلی مجلس میں بتایا تھا شب عاشور امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمائے اللهم صل على محمد. حیدری یا, کم از کم بچہ تو بولا اللہ صلوات پڑھی محمد والے محمد. اللہ مولا نے فرمایا عباس میں جنگ نہیں کرنا چاہتا, اسلام میں جنگ ہے ہی نہیں. میں نے بتایا تھا ڈیفنس جو کہا جاتا ہے اسلام کا دیا ہوا ہے, ڈیفنس بجٹ بھی اسلام کا دیا ہوا ہے, حالانکہ افنس کرتے ہیں ڈیفنس کہتے ہیں. اسلام میں جنگ کی ابتدا نہیں ہے, جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہے نا بات ساتھ. مولا نے فرمایا جنگ نہیں کرنا چاہتا. انا احب الصلاۃ, نوجوان بچوں سے گزارش ہے, بہترین یہاں پر ایمس والوں سے بھی گزارش ہے کہ بلیک جو ہے ٹی شرٹ بنائے, آئی لو نماز امام حسین جی. انا احب الصلاۃ, مولا فرماتے ہیں مجھے نماز سے محبت ہے. یہ نہیں کہیں کہ نماز پڑھتا ہوں, اس سے بھی زیادہ بات ہے, مجھے نماز سے محبت ہے. اور پیچھے مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت ہے. مولا امام حسین شب عاشور فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں سے محبت ہے, ایک تلاوت قرآن, دوسرے نماز. یہ قرآن سے محبت میں اضافہ کیسے کریں؟ حسن جوان بچوں سے گزارش ہے, جہاں پر آپ لوگ جاتے ہیں کینیسیولوجی سائنس کے لائن میں, قرآن کو بھی اس لائن سے سوچنے کی کوشش کیجئے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, جاپانی ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ایموٹو, اس کی ایک مثال ایک کتاب چھپی ہے نیو یارک ٹائمز کے اعتبار سے, وہ بیسٹ سیلر بھی ہوئی ہے کتاب, اور آپ لوگ گھر میں جانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں. بچے جوان بچے ذرا سا آن لائن جا کر کے فائنڈ کر سکتے ہیں. دا ہڈن میسیجز ان کواٹر, کتاب کا نام ہے چھپے ہوئے میسیج کس کے اندر, قرآن میں. ثابت کرتا ہے ہاؤ آور انٹینشنز آور کانشیس افیکٹس دی ریلم آف میٹر. کیا معنی ہیں؟ عالم ناسوت, عالم برق برہوت, عالم ملکوت, ایک بہت بڑی بحث ہے, وہ بحث میں چلے جاؤں گا تو آپ بھی پریشان ہوں گے. کیا ہے یہ میٹر جس میں رہتے ہیں ہم دنیا میں؟ اس میٹر کا نام ہے عالم ناسوت. عالم کیا ہے؟ ریل. ریلم کو کہتے ہیں عالم. اب ہم جب انشاءاللہ جائیں گے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون, جب ہماری روح پرواز کر جائے گی تو کدھر جائے گی؟ عالم ملکوت میں, اس مقام پہ جائے گی جہاں ملکوت ہے. سمجھ میں آگے بات؟ یہ ہے دنیا کیا ہے؟ عالم ناسوت. وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری انٹینشنس نیتیں اور ہمارے کانشیس ہمارے الفاظ افیکٹ کرتے ہیں اس مادی دنیا کو. پھر اس نے ریسرچ کیا پانی کو سامنے رکھ کر پانی کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کیا, بولنا شروع کیا اور اس کے بعد اس کو आइस में बन आइस बना करके फिर उसकी पार्टिकल्स को पारा करके देखा कि सब बहुत खूबसूरत उसी तरह से बाकी हैं जिस तरह से पानी से होना चाहिए। उसके बाद उसने पानी में बुरे अल्फाज बोल 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 करके उसको फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद उसको फोड़ा, फिर उसको लैब में ले गया, देखा कि उसके पार्टिकल्स टूट रहे हैं। तवज्जो बहुत अच्छी तुझे है नहीं। देखिए पानी में वो ये कहता है कि ये जो असरात हैं ये पानी में, ये क्या मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इमोटे की तारीफ कर रहा हूँ, जितनी तारीफ वो करिए मैं मुझे उसे दखल नहीं है। कुरान सूरह अंबिया, तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, सूरह अंबिया 21 चैप्टर आयत नंबर 30 आखिरी हिस्सा है, वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय, हमने हर चीज़ की हयात पानी में रखी है। तवज्जो का तालिब हूँ। अगर हम कुरान से लेकर के दुनिया को साबित करते तो दुनिया को सिर्फ डाटा तैयार करके देना है, कुरान तहकीक शुदा चीज़ है, सिर्फ बताना है कि ये चीज़ है। अगर नौजवान हमारी नई नस्लें कुरान को इस रुख से देखेंगे तो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बदलेगी, दुनिया में बेहतरीन साइंटिस्ट कहला सकेंगे। ये कुरान में दम है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय, तो हर चीज़ की हयात काहे में है, पानी में है। इसीलिए अभी जो जा रहे हैं दूसरे प्लानेट पर कुछ नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं पानी है या नहीं है। अगर पानी है तो लाइफ है, पानी नहीं है तो लाइफ नहीं है। एक जुमला सुन लीजिए, हयात ही हयात दे सकती है, मुर्दे हयात नहीं दे सकते। तवज्जो का तालिम, हयात लाइफ कैन गिव लाइफ, डेथ कैन नॉट गिव लाइफ। हुसैन लाइफ है, हयात है, हयात देता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ज़रा सा बास करो, और ज़रा सा मैं इन कुरान को एज ए फिक्शन ना देखिए, ये प्रूफ करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं कल की मंजिल तक पहुँचा करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा। बहुत अच्छी तरह से सब मिल करके दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह मेरे साथ दुरूद पढ़िए मेरी तरह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। यूनाइटेड सलवात है ना, अभी इससे मज़ा आता है, यूनाइटेड रहिए, मुख्य मारने में मज़ा आएगा। तो यूनाइट सब पढ़िए, अल्लाहुम्मा मोहम्मद। इसी आयत का पहला हिस्सा, नौजवान बच्चे सब जानते हैं कि आज की यूनिवर्सिटीज़ में बिग बैंग थ्योरी इज़ एन वेल नोन थ्योरी है, वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी एवरीबॉडी नोज। जी क्या थ्योरी है, दिस वर्ल्ड वाज वन एंटिटी और उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन का नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाई जाती है, हत्ता मुस्लिम कंट्रीज़ में भी अगर जा कर के पाकिस्तान में पूछें तो बताएंगे जी हाँ बिग बैंग थ्योरी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। ठीक इसी यूनिवर्सिटी में ये भी पढ़ाया जाता है, वेयर देर इज़ ए कॉज हैज़ टू हैव इफेक्ट, वेयर देर इज़ ए इफेक्ट हैज़ टू हैव कॉज। जहाँ इल्लत है मालूल का होना ज़रूरी है, जहाँ मालूल है वहाँ इल्लत का होना ज़रूरी है। अगर बिग बैंग मालूल है तो इल्लत क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बिग बैंग इफेक्ट है व्हाट इज द कॉज, तुम ही सिखाते हो यार, तुम एक तरफ बोलते हो बिग बैंग थ्योरी है, खुदा का शुक्र है थ्योरी है, और थ्योरी के लिए जो डेफिनेशन है, थ्योरी विच कैन बी चेंज कॉन्स्टेंटली इज कॉल्ड थ्योरी। नॉलेज कभी चेंज नहीं होता, थ्योरी चेंज होती है, कुरान थ्योरी नहीं है, नॉलेज है जो कभी चेंज होने वाला नहीं है उस यकीन के साथ। कुरान जब थ्योरी नहीं है तो थ्योरी यह है कि बिग बैंग हुआ, हमारा सवाल है कि बिग बैंग हुआ तो व्हाट कॉज बिग बैंग, किसने कॉज किया। ये जो थ्योरी ऑफ बिग बैंग है चुराई गई कुरान से, आधी थ्योरी कुरान से ली गई है और आधी ली गई है बात, हमेशा ये आधी बात लेने की कोशिश करते हैं, आधी बात लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। इस्लाम ये अच्छा है, बहुत मज़ेदार है, एक जुमला सुन लीजिए, यूजिंग इस्लाम एज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस, जब कभी मज़ा आता है तो हम भी अपनी ज़िंदगी में हम लोग वहाँ पे इस्लाम लेना चाहते हैं जहाँ पर हमको लुत्फ़ आता है। इस्लाम कहते हैं ना टोटल पैकेज। एक मिसाल समझ लीजिए, आजकल शादियों में क्या हो रहा है भाई, पहले दस्तरखान बिछाओ खाओ ना, पहले ना लगा दिया, खाना लगा दिया गया है, खड़े हो जाइए लाइन में, खड़े हो जाइए, प्लेट हाथ में लिया, सामने से देखा सैलेड है, अरे यार सैलेड तो घर में खाते ही रहते यार, यहाँ तो बोटी मारने का दिन है यहाँ। अब जो है आप जो हैं वहाँ क्या किया, बफे। बफे क्या है, ये टेकिंग व्हाट यू लाइक इट। तवज्जो, इस्लाम बफे नहीं है, इस्लाम गदीरी पैकेज है। इधर टेक इट और लीव इट। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला نؤمنو ببعضن ونكفرو ببعضن, we believe in something, we disbelieve in something. Quran kata rejected, believe total package par, ye pura package hai, hai na mere saath. To big bang theory kahan se sikha, isi surah anbiya. Mere naujawan se guzarish hai, jab wapis jao, jo log online sun rahe hain, open the book, open the Quran, the beautiful book, 21st chapter ayah number 30. Awalam yaralladina kafaru, काफर से, काफरों से मुराद नॉन बिलीवर्स, दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड, उसको कहते हैं काफर। नो नीड टू बी हॉट फीलिंग, ठीक है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नॉन बिलीवर्स हैं। अवलम यरल्लदीना कफरु, कुरान चैलेंज कर रहा है नॉन बिलीवर्स को, अन्नल अन्नस समावाति वल अर्द कानत रत्का, जी जमीन और आसमान एक एंटिटी थी, कानत रत्का, फतकनाहुमा, हमने उसको फाड़ा, यानी बिग बैंग कॉज हम हैं, कोई और कॉज नहीं है, ये हम कहकर के खुदा ने कुछ और इशारा भी कर दिया कि एक पूरा सिलसिला है इल्लत व मालूल का, उन इल्लत व मालूल में फरिश्ते भी हैं, उन इल्लत व मालूल में मोहम्मद व आल मोहम्मद भी हैं, इसीलिए आप पढ़ते हैं हदीस किस्सा में फलम मकतमल न जमीअन तहतल किसा, ये भी अजीब व गरीब है, फलम मकतमल न जमीअन, फलम मकतमल न, फलम मजतमाना नहीं है, जब सब जमा हो गए, नहीं जब कामिल हो गए, है तवज्जो का ताले हैं, फलम मकतमल न जमीअन, कामिल हो गए, कैसे कामिल हो गए, सरकार हैं सरदार अंबिया हैं, अली हैं सरदार औलिया हैं, फातिमा जहरा हैं सरदार सैयदतुन्निसाइल आलमीन हैं, हसनैन हैं सरदार जवाना ने जन्नत हैं, जब सब सरदार हैं, अरे गैरे नत्थु खैरों की जरूरत ही क्या है। चलो बात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वाजिल फराजान। हमसे बहुत आजकल बाज मोमिनीन भी कहने लगे हैं ये वसीला क्या है कि अल्लाह से डायरेक्ट, जी हाँ पूरे मासूमीन की दुआएं अल्लाह से डायरेक्ट ही हैं, दरमियान में सलवात है, मौला इमाम सज्जाद की दुआएं उठा करके देगी, या पहले सलवात है या आखिर में सलवात है या दरमियान में बाज ऐसी दुआएँ हैं हर सेंटेंस में दुरूद है। ये दुरूद क्या है, मैं मिसाल देता हूँ, ये टर्बो है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर अब अल्लाह से बात करना है तो अल्लाह बात को सुनता है, लेकिन ये टर्बो लगा दीजिए बात को बहुत तेज़ी से सुनता है। टर्बो को समझने के लिए आज की बात समझते हैं, मौलाना यहाँ पर फोन में चल नहीं रहा है इसलिए कि यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है, यहाँ फोन में क्या नहीं है, बोलते ना बाप मैं बेसमेंट में हूँ, मैं फलां जगह हूँ, ये कन्फाइन जगह पर हूँ, लाइन मेरी क्या बोलते हैं आप उसको, सिग्नल्स अच्छे नहीं हैं। अब समझ में आया इमाम हुसैन के कुब्बे के नीचे कितने स्ट्रांग सिग्नल्स हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद दुआ का कबूल ना होना सवाल ही नहीं पैदा होता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जी बात समझ में आई, आइए क्या कह रहा कुरान, कानत रत्कन, ये यूनिवर्स जो थी एक एंटिटी थी जमी हुई, किसने फाड़ा, हमने फाड़ा, मौलाना ये अली या मोहम्मद हमें समझाइए क्या ज़रूरत है, इनकी क्या ज़रूरत है, आजकल अपने मोमिनीन भी कहने लगे, इसलिए कि बाज़ मोमिनीन ने शुरू किया है ऐसी बातें कहना कि जिससे असल अकायद मोहम्मद आले मोहम्मद पर ज़र्ब लगता है, उसकी जहालत की बिना पर है। अगर इल्म हो तो कभी परेशानी की बात नहीं है। सूरह नाज़ियात, अब देखिए, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू, पढ़िए कौन, जब भी अल्लाह इरादा करता किसी चीज़ को, हो जा तो हो जाता, तो भी हो जा कह दिया तो ज़मीन कितने साल की है, 5 बिलियन ईयर्स की, कितने साल में बनी, बिलियन सर साफ लगे, पहले मौलाना ने खुतबा पहले खुद में बयान किया है, पानी था मौजें आई 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 आए बढ़ती चली गई, कब पैदा हुआ, उसके बाद ये हज़ारों लाखों बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये ग्लोब बना इसी पानी के, पहला खुतबा मौलाना ने हाउ दिस वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड पूरा मेंशन किया है, बेखूबसूरत है दुनिया के यूनिवर्स के पैदा होने का, ठीक, कितने साल की ज़मीन है, 5 बिलियन ईयर्स की, कितने साल में इवॉल्व हुई, बिलियन साल लगे, किसने इवॉल्व किया, उस कुन ने, जब कुन कहा तो कुन कहा तो यकून कितने जमाने में हुआ, कई पीरियड के बाद हुआ, अब ये कुन को यकून करने वाला कौन है, मेरे मजमा अच्छी तरह से समझे, सूरह नाज़ियात की 5वीं आयत है, वल मुदब्बिरात अमरन, वल मुदब्बिरात इन्नमा युरीदुल्लाह इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन यकूल लहु कुन फयकून, अम्र परवरदिगार जब भी अल्लाह कुन कहता है, वो भी कुन कहने की ज़रूरत नहीं, मौला अपने नहजुल बलागा मौला फरमाते हैं ला बेसौतिन यकरा, ऐसा ना समझो कि कुन काफ ने नून पेश कुन कहा तो आवाज़ आई फिर बनना शुरू आना, उसका इरादा ही बनना है, इधर इरादा किया जबान से नहीं, अल्लाह ने बोल इसलिए कि उसके पास जबान भी नहीं है, वो इरादे का नाम ही कुन है, अब ये कुन जब इरादा कर दिया तो कैसे पैदा हुआ, अल्लाह ने कहा ये जो अम्र कर रहा हूँ फरिश्तों को मैंने लगाया है, ये मेरे अम्र को ये फरिश्ते चलाते हैं जो वजूद की शक्ल में लाते हैं, कुरान ये कह रहा है इस कायनात को वजूद की शक्ल में लाने वाले फरिश्ते हैं, तो हम जब कहते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़रिए से ज़मीन बनी आसमान बना, तो इसमें परेशानी की बात क्या है, शिर्क कहां से हो गया, अगर तुम्हारे जहन में शिर्क है तो तुम्हारी खबासत है, कुरान पढ़ो तो सब अहले बैत तौहीद ही तौहीद, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला, अज्जिल फरजहुम, सिर्फ डाउट को खत्म करने के लिए मुझे ये तमाम यहाँ तक मुझे पढ़ना पड़ा, लुत्फ उठाइए कुरान से, एक एक वर्ड कुरान का, लेटर कुरान का नूर है, और हमें हमारी आंखों को खोलना है, इससे नॉलेज लेना, साइकोलॉजी इसमें है, बायोलॉजी इसमें है, कॉस्मोलॉजी इसमें है, एवरी साइंस इज देयर, प्रोवाइडेड वी हैव टू रीड कुरान फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, कुरान को एज ए रिसर्च पढ़ें, कुरान को ईसाल सवाब के लिए ही ना पढ़ें, ईसाल सवाब यकीनन सवाब है, शायद मोटिवेशन फैक्टर है ताकि मरहूम के नाम से खोले, कम से कम खोले, है हदीस में कि कुरान को देखना इबादत, पढ़ना तो बहुत बात है, खोल के देखना है, दुल्हनों के सामने खोल देते ना भी, देखना इबादत, खाने काबा को देखना इबादत, माँ बाप को देखना इबादत, अली को देखना है, तो इबादत क्या मराहल अलग अलग हैं, किसको क्या देख रहा है, कौन देख रहा है, अली को देख रहा है तो जमाल परवरदिगार को देख रहा है, वो वजहुल्ला है, वो दुनुल्ला है, हम जम्बुल्ला है, जब उसको देख रहा है तो सब कुछ उसने देख लिया है, ये विलायत का मसला सिर्फ आसान मसला नहीं है, हकीकत है, इस हकीकत को समझना चाहिए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आज इस लास्ट चैप्टर को ख़त्म करना चाहता हूँ, वह है कल मैंने बताया था हज़रत इब्राहिम ने दुआ की है, सूरह इब्राहिम 14th chapter ऑफ द कुरान 35वीं आयत, कल मैंने इशारा किया था, हज़रत इब्राहिम ने दुआ की, परवरदिगार अल्लाहुम्मा जअल हाज़ा बलदन आमना, इस शहर को अमन अमान का शहर बना दे, सिक्योरिटी पीस, वजनुबनी व बनैया, मुझे बचा ले, मेरे बच्चों को भी बचा ले, मेरे नस्लों को भी बचा ले। अन्नाबुदल असनाम, बुतों की पूजा से मुझे भी बचा ले, मेरे बच्चों को भी बचा ले। बहुत अहम है, इसीलिए कल मैंने जो इशारा किया था, पहला मरहला है औदु बिल्लाही मिनश शैतानिर्रजीम, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पहले नेगेटिव फोर्सेस को हटाना है, फिर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। जब तक कि नेगेटिव एनर्जी हटेगी नहीं, पॉजिटिव एनर्जी पेनिट्रेट करने वाली नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो उसूल हैं, उसके बाद फिर हज़रत इब्राहिम ने दुआ की। इस दुआ को आप लोगों से गुजार, सर बाप बाप से गुजारिश है, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से गुजारिश है कि जिनकी छोटे छोटे बच्चे हैं उन माँ बाप से गुजारिश है, इस दुआ को जो हज़रत इब्राहिम ने पढ़ी है अपनी नमाज का हिस्सा बना लें। इसी सूरह इब्राहिम की आयत 40 रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगारा मुझे भी मेरे बच्चों को भी नमाज का कायम करने वाला बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, ये दुआ जो है इसके बाद की जो आयत है, मैं हमेशा कहा करता हूँ तीन जनरेशन्स के लिए हमेशा दुआ होती है, मालिक मुझे सेहत दे, मालिक मुझे दौलत दे, मालिक मुझे माल दे, मालिक मुझे औलाद दे, मेरे लिए है। लेकिन कभी ये नहीं होता कि तीन जनरेशन के लिए दुआ करूँ। ये तीन जनरेशन के लिए पहली दुआ क्या है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात, मुझे भी बचा ले, मैं बचा हुआ नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों का सवाल ही नहीं होता, और मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। उसके बाद फिर माँ बाप, रब्बना अग़फिरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, बेहतरीन दुआ है। और आई एम वेरी मच कंसर्न, मैं बहुत, मेरा दगदग बे इंतहा, जितने साल यहाँ रहा हूँ 42 ईयर्स के बाद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, आई एम स्केयर टू डेथ, इतनी परेशानी है मुझे। इसलिए कि मैं जब स्टैटिस्टिक मेरे अपने मोमिनीन का देखता हूँ, सादात फैमिलीज मिंगल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर, आई नो सैयद फैमिलीज दे हैव गॉन। क्यों? इसलिए कि अटैचमेंट जब दीन से नहीं रहेगा, अटैचमेंट जब सेंटर से नहीं रहेगा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, शब जुम्मा अपने मरकज से कहीं भी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह मौजूद है, जब भी शब जुम्मा आए अपने बच्चों को ले जाएँ वहाँ पर, जब भी शहादत मासूमीन की आए बच्चों को ले जाएँ माए, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए कि हमारे पास ये माहौल ही नहीं, कम अज़ कम ये माहौल आप क्रिएट करें, और फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार ये मैंने काम कर दिया है, अब तू जब तक नहीं चाहेगा ये हिदायत होने वाली नहीं है। इसलिए कि वमन यहदिल्ला फला मुदिल्ला लह, जिसने जिसको अल्लाह हिदायत कर दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले पर। तो दुआ बहुत बड़ा फैक्टर है, इस फैक्टर को कभी मत भुलाइए। और आपको मैं दे रहा हूँ दुआ, दुआ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम 25वीं दुआ, दुआ इसमें सहीफ़े कामिला में, सहीफ़े सज्जादी में, उस दुआ में मौला ने एक जुमला फरमाया है। दुआ मैंने बताया था कल कि खुतबे मौला अमीन के मुकाबिल में, सिर्फ ये दुआ ही नहीं है, नॉलेज का बहुत बड़ा समंदर है ये, न इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी है, एजुकेशनिस्ट के लिए बेहतरीन चीज़ है, माँ बाप के लिए खुसन बहुत तरीके, एक एक जुमले पे काम कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तरबियतहिम, मौला फरमाते परवरदिगारा मेरे बच्चों की तरबियत में मेरी मदद फरमा, आसान काम नहीं है, जब तक तू नहीं मदद करेगा तो मेरे बच्चों की तरबियत आसान काम नहीं। आइन्नी, मेरी तरबियत करना चाहता हूँ मेरे बच्चों की, तीन चीज़ों, अबदानहिम अदियानहिम अदियानहिम अखलाकहिम, अबदान अदियान अखलाक, परवरदिगार मेरे बच्चों की तरबियत तीन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अबदान बॉडी, बॉडी को सही ग़िज़ा देना चाहिए, सही बचपने से जंक फूड से जितना जुदा रखिए रखिए, बादाम ऐसी चीज़ें जो बच्चे की ब्रेन के लिए, खुसन 7 ईयर्स तक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, और खुसन माँ के शिकम में बच्चा जब आता है ऐसे नर्चरस ग़िज़ा बहुत इफ़क करने वाली है, हकीकत है। आज साइंस ने भी बता दिया, इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया कि कौन सी ग़िज़ाएँ किस पे असर करने वाली है। अबदान की जिम्मेदारी माँ बाप की है, जहाँ बच्चों को सही ग़िज़ा दें वहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स में भी ले जाएं, उनको भी खिलाएं भी खेलें भी, ताकि इस बच्चे जो हैं उनकी बॉडी उस लिहाज से ट्रेंड हो और उसमें वो नर्चरिंग सिस्टम भी पैदा हो जिससे उनका ब्रेन ओपन हो सके। अबदान, उसके बाद अदियान, दीन की तरबियत। दीन की तरबियत, मैंने स्कूल इस्लामिक स्कूल में डाल दिया बच्चे को, कुछ नहीं होता। पहला पेरेंट्स का जो फंक्शन था टोरंटो में असादिक स्कूल का, उसमें मैंने एक तकरीर की थी, अभी तक याद है, बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इस्लामिक स्कूल असादिक, सब जानते हैं असादिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल भी हो गया। सामने पूरे पेरेंट्स बैठे हुए थे, मेरी माएँ बेटियाँ भी बैठी हुई थी, सबसे मैंने कहा बच्चे को इस्लामिक स्कूल में डालने से कुछ होने वाला नहीं है। बेटी को हिजाब पहना करके ला रही हो, खुद बेहिजाब बैठी हो, किसको बेवकूफ बना रही हो? टू हूम आई एम चीटिंग? 50 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं हलाल गोश्त के लिए, बेहिजाब बैठे हुए, टू हूम आई एम चीटिंग? किसको बेवकूफ बना रहा हूं? दीन खिलवाड़ नहीं है, दीन एक हकीकत है। तो मैं अगर इस्लामिक स्कूल में बच्चे को डाल रहा हूं तो बच्चे का माहौल स्कूल का, बच्चे का माहौल घर का अगर कोऑर्डिनेट करेंगे या नहीं तो बच्चा डबल स्टैंडर्ड पैदा करेगा, एक घर की जिंदगी। चुनांचे हम लोग हमारी जिंदगियों में डबल स्टैंडर्ड है, एक दीनी मराकिस की जिंदगी, एक हमारे घरेलू जिंदगी। इस्लामी कहता है कि पूरा मुकम्मल सिस्टम एक होना चाहिए। इंशाल्लाह जब आऊँगा टेंजिबल जो फैक्टर्स हैं उसमें तफसील से गुफ्तगू करेंगे, इंशाल्लाह समझेगी आप। कोशिश ये करें कि हम लोग दीन को जैसे कि दीन है वैसे लेने की कोशिश करें, अपने मसाले ऐड ना करें। बाज ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में कि जहाँ पर लोग मजलिस में जब तबर्रुक के लिए जाते हैं तो घर से अपनी चटनी ले जाते हैं, आज भी हैं जी चटनी अपनी बनाए हर एक, आबाज मिर्ची ज़्यादा खाता है, कोई खट्टा ज़्यादा खाता है, हम लोग साउथ इंडियन खट्टे ज़्यादा खाते जी, तो अपनी मज़ेदार वो चटनी ले जाते हैं, फिर वो तबर्रुक लेने के बाद उसमें मिला के खाते हैं। आप भी आइए मजलिसों में, अपनी चटनी मत लाइए, जैसे समझाया जा रहा है वैसे समझ के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। यार हकायक हैं दीन के। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तरबियत अगर सही हो जाए तो हबीबी अपने मज़ाहिर बन सकता है। देखा सरकार ने कि एक बच्चा है हुसैन के पीछे जा रहा, जहाँ हुसैन पैर उठाते हैं वहाँ की खाक उठाता है, ये क्या चीज़ है? मारिफत की किस मंजिल पर ये बच्चा है जी, ये विलायत के पैर हैं, इसके नीचे सिलिकन है, कह गया जुमला एक समझने की कोशिश की, इसमें इसके नीचे नूर के नीचे नूर है, तो जहाँ हुसैन पैर रख दें वही खाके शिफा है। इमाम हुसैन मज़ाहिर, यानी हज़रत हबीब के वालिद ने देखा कि बच्चे का अटैचमेंट हुसैन से ज़्यादा है, बेइंतहा इश्क रखता है इमाम हुसैन से। एक दिन ख्वाहिश की, मौला मैंने देखा कि हबीब बहुत ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत बेइंतहा इश्क रखते, कितना अच्छा हो जाए कि आप मेरे घर में आ जाएं, ताकि इसका भी दिल बहल जाए और इसका दिल बढ़ जाए जिसको कहते हैं। मौला ने कबूल किया दावत। अभी हबीब काउंट कर रहे हैं, अय है मैं तो कहता हूँ इंतज़ार ऐसा होना चाहिए अब आएंगे मौला, अल्लाहुम अज्जिल फरजा जो कहते हैं, ऐसा अगर इंतज़ार हो जाए तो यकीनन मौला आ जाएंगे। हबीब इंतज़ार कर रहे हैं, छत पे जाते हैं नीचे आते हैं, छत पे जाते हैं नीचे आते हैं, छत पे जाते हैं और देख रहे हैं जहाँ से दरवाजा रास्ता आ रहा है, अब देख रहे हैं कि अभी मौला आए चाहते हैं आया। अब देखा कि नूरानी चेहरे मौला अमीर मोमिनीन इमाम हसन इमाम हसन आ रहे हैं। अब वो ख़बर माँ को माँ बाप को देने के लिए तेज़ी से उतरने लगे, पैर फिसला गिरे मर गए। 20 साल का सीन है, 3 हवाले हैं मेरे पास, ऐसे ही नहीं बयान करता, कोशिश करता हूँ कि रिसर्च शुदा तहकीक शुदा बात। 20 साल का जवान शौक़ ज़ियारत मौला में जब तेज़ी से उतरा है, गिरा सर फटा मर गया। इश्क़ अहले बैत किस मंजिल पर है, मज़ाहिर ने अपनी बीवी से कहा मैं नहीं चाहता कि मौला वाकिफ़ हो जाए हमारे बेटे की मौत पर, हम इसको महफूज रखेंगे, हम लोग बिल्कुल बहाल रहेंगे जब तक ये घराना अहले बैत का खा के ना चला जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब मौला तशरीफ लाए पहला सवाल किया हबीब कहाँ है, मज़ाहिर ने कहा कि मौला वो कहीं गया होगा। अब वो टाल मटोल की बातें सब जानना चाहते हैं। मौला ने कहा ना जब आया हूँ मैं, उसके बच्चा आया है मेरा हुसैन आया है उसके इश्क में, वो आया है वो बुलाया है उसके इश्क में, कहाँ है बता दो। तो अंदर से माँ के रोने की आवाज़ आई, जिगर चाहिए मैं मोहब्बत में इंसान इस मेयार पे पहुँच जाए। मौला आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं, सब वाकिफ है। मौला इमाम मौला अमीर मोमिनीन ने कहा हुसैन तुम्हारी मोहब्बत जरा इसके लिए दुआ करो, इसकी जिंदगी के लिए दुआ करो। इमाम हुसैन ने हाथों को उठाया या हय या कय्यूम परवरदिगारा ये तेरा भी आशिक है हमारा भी आशिक है, इसने हमारी मोहब्बत में जान दी है, तू हयात मौत का मालिक है परवरदिगार इसको नई हयात से नवाज दे। इधर हजरत इमाम हुसैन ने दुआ ख़त्म भी न की थी, एक मरतबा हरकत पैदा हुई, बच्चा जवान या हुसैन कहते हुए ये इश्क है हबीब का मौला हुसैन से। अंदाज़ा उस वक्त कर सकते हैं कि जब मौला का ख़त पहुंचा है मिनल हुसैन इला हबीबी हबीब इब्न मज़ाहिर इला रजुलन फ़कीह अल्लाह अकबर। इना फकाहत का अगर कोई सर्टिफिकेट दे दे वो हबीब है। तारीख़ कहती है कि कूफे का बाज़ार सबसे जो ज़्यादा गर्म था लोहारों का बाज़ार गर्म था, हर तरफ तीर तबर बन रहे थे और बहुत मशविश थे हालात, बहुत मशविश थे। हबीब और ज़ौजा के साथ दो लुक्मे खा रहे हैं, एक मरतबा हबीब का लुक्मा गुलूगीर हुआ। अरबों में ये रस्म थी कि जब कभी अगर इस तरह का फंस जाए लुक्मा, समझना कि अभी कोई कासिद शायद आया चाहता है। दकुल बाब हुआ, पूछा हबीब ने मान हुआ कौन है वो, आने वाले ने कहा अना बरीदुल हुसैन। चाहने वाले भी कैसे चाहने वाले हैं, मौला हुसैन ने ख़त दिया तो करबला से पहुंचाने के लिए कूफा पहुंचे हुए हैं और ख़त लेकर के पहुंचे अना बरीदुल हुसैन, नाम हुसैन लेते हुए हबीब उठ गए तेज़ी से दरवाज़े की तरफ। दरवाज़े पहुंचे क्या बात है, ये ख़त है जो मौला ने दिया, हाथों में लिया रजल फ़कीह हबीब इब्न मज़ाहिर तेरा मौला गिरफ्तार हो चुका।
نرغے آدھا میں ہیں حبیب، ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے آ جانا۔ بے اختیار حبیب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ حبیب نے چاہا کہ آنسوں کو پہنچیں اور نہ بتائے زوجہ کو۔ واپس آئے، پوچھا زوجہ نے کیا بات ہے؟ کہنا کوئی بات نہیں۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ معلوم ہو رہا کہ تمہارے چہرے سے کوئی پریشانی کی بات ہے۔ آخر میں حبیب مجبور ہے کہ ہاں مولا نے بلایا ہے۔ زوجہ حبیب نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں تمہارا کیا ہوگا۔ حبیب کی زوجہ نے کہا میں خاک چھانوں، میری پرواہ بھی نہ کرو، فاطمہ کا لاڈا بلایا ہے، جاؤ حسین کی مدد کے لیے چلے جاؤ۔ حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا، کہا کہ مزرعے کے پیچھے سے آؤ، اس لیے کہ میں اگر معروف راستوں سے جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، پیچھے سے جاؤ میں آ جاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ غلام گھوڑے کو لیے ہوئے اس مزرعے کے قریب گیا، اس کھیت کے قریب گیا جہاں پہ بتایا گیا تھا یہاں ٹھہرو۔ حبیب جب پہنچے ہیں تو گھوڑے نے گھاس سے اپنے منہ کو ہٹایا تھا۔ غلام یہ کہہ رہا تھا اگر تیرا آقا نہیں آ رہا ہے مولا حسین کی مدد کے لیے، میں تجھ پہ سوار ہوں گا۔ حبیب کہتے ہیں آخر ایسا کون سا غربت کا موقع ہے کہ حسین پر غلام بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ حبیب چلے، ادھر علم سب کے ہاتھ میں دیا گیا، ایک علم باقی ہے۔ گڑبڑ، ایک مرتبہ آواز گونجی تکبیرات کی، زینب نے پوچھا فضا معلوم کرو کیا بات ہے؟ جو آتا ہے فوج در فوج حسین کے قاتل آتے ہیں، کوئی مدد کرنے والا آتا نہیں ہے۔ فضا واپس گئی، بی بی مبارک ہو، حبیب آ گئے، حبیب مولا کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے زینب نے فضا سے کہا جاؤ حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ حبیب نے جب زینب کا سلام سنا، خدایا آیا فاطمہ کی اولاد پر یہ دن آیا۔ اجرکم علی اللہ، دو جملے اور ختم دعا، خدا کسی غم میں نہ رلائیں۔ پانچواں دن آ گیا، عزاداری اتنی تیزی سے گزر گئی۔ دیکھیے کہیں مجلس ہوتی ہے، بی بی آتی ہیں، پہلو میں بیٹھتی ہیں، رونے والے تیری گودی سلامت رہے۔ میں کہوں شہزادی ذرا مال و منال کی دعا دیجئے، جاؤ حشم کی دعا دیجئے، اولاد کی سلامتی کی دعا کیوں؟ عجب نہیں جواب ملے، تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، حبیب آئے، ہاتھ میں علم لیا، مجھے نہ جنگ پڑنی ہے۔ حبیب جنگ کرتے ہیں، امام حسین سراہنے پہنچ جاتے ہیں، ایسی محبت ہو، خدا کرے کہ آخری لمحہ ہمارا مولا ہمارے سراہنے آئے۔ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ حبیب تم بھی چلے کہ مولا اجازت دیجیے، مولا آپ کی خدمت نہیں کر سکا، حبیب ہم سے پہلے تم جنت چلے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا پروردگارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ یا کاشف الدر والبلوى، خدایا پروردگارا، یا من لطیف لم یزل، الطف بنا فیما نزل، انت القوی نجنا عن قہرک یوم الخلل، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، عبادہم من نسلہم قد جاءنا من فضلہ، العابد والباقر والصادق والکاظم، ثم الرضا ثم التقی ثم النقی والعسکری والحجت کالقائم۔ خدایا ان ہماری آنسوؤں کی قسم، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التبا سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے. پروردگارہ ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. ان کو جوار امام میں جگہ عنایت فرما. مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ. اے انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک میں دا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ماتم حسین یا